अध्याय 14 सदोम का विनाश। ये अध्याय उत्पत्ति 19 पर आधारित है। सदोम यर्दन घाटी के नगरों में सबसे सुंदर उस मैदान में स्थित था जो सौंदर्य और उर्वरता में परमेश्वर की वाटिका जैसा था। यहां पर उष्ण कटिबंध की प्रचुर वनस्पति फलती फलती थी और यहां खजूर, जैतून और दाखलता का घर था और यहां साल भर फल अपनी सुगंध बिखेरते थे। मैदानों को भरपूर उपज के आवरण ने ढका हुआ था और भेड़ों और गाय बैलों ने मैदानों को ढांक रखा था। कला और व्यापार ने इस समभूमि को समृद्ध बनाने में योगदान दिया। पूरब के खजाने वहां के महलों को सुसज्जित करते थे और रेगिस्तान के कारवां वहां के व्यापार के बाजारों की आपूर्ति करने के लिए बहुमूल्य वस्तुओं के भंडार लाते थे। कुछ ही श्रम और चिंतन करने से जीवन की हर आवश्यकता की आपूर्ति हो जाती थी और पूरा साल उत्सव की एक पारी प्रतीत होता था। हर तरफ प्रचुरता के प्रभाव ने घमंड और भोग विलास को बढ़ावा दिया। जिस हृदय ने कभी अभाव या कष्ट की पीड़ा नहीं सहन की हो, उसे आलस्य और धन कठोर बना देता है। मनोरंजन के प्रेम को धन और खाली समय बढ़ावा देता है और लोग कामुक विलासिता में डूब जाते हैं। यहेजकेल 16 आयत 49-50 में लिखा है, देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था कि वो अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। अतः वो गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी और ये देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। धन और खाली समय से अधिक मनुष्य को और किसी चीज की अभिलाषा नहीं होती, लेकिन इनसे ही वे पाप उत्पन्न हुए जिनके कारण शहरों का सर्वनाश हुआ। उनके बेकार आलसी जीवन ने उन्हें शैतान के प्रलोभनों का शिकार बनाया और उन्होंने परमेश्वर की छवि को विकृत कर दिया और वे पवित्र बनने के बजाय शैतानी बन गए। आलस्य मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शाप है, क्योंकि अपराध और बुराई इसके पीछे आती है। ये विवेक को असमर्थ बनाता है, समझ को पथ भ्रष्ट कर देता है और आत्मा को हीन बना देता है। शैतान घात लगाए बैठा रहता है, असावधानी को नष्ट करने के लिए तैयार, जिनका खाली समय उसे आकर्षक स्वांग की आड़ में भड़काने का अवसर देता है। मनुष्य के आलस भरे समय में वो ज्यादा सफल होता है। सदोम में आमोद प्रमोद और धूमधाम, भोजपान और मादकता का वातावरण था। सबसे घिनौने और असभ्य मनोविकार असंयमित थे। लोग खुलेआम परमेश्वर और उसकी आज्ञा की अवहेलना करते थे और हिंसक कृत्यों में आनंदित होते थे। हालांकि उनके सामने जल प्रलय पूर्व जगत का उदाहरण था और उन्हें ज्ञात था कि किस तरह परमेश्वर का क्रोध उसके विनाश द्वारा प्रकट हुआ था, फिर भी उन्होंने दुष्टता का वही मार्ग चुना। लूत के सदोम में स्थानांतरित होने के समय भ्रष्टाचार सार्वजनिक नहीं हुआ था और दयावान परमेश्वर ने नैतिक अंधकार के बीच प्रकाश की किरणों को आने दिया था। जब अब्राहम ने एलाम वासियों से बंधकों को मुक्त कराया, लोगों का ध्यान सच्चे विश्वास की ओर गया। सदोम वासियों के लिए अब्राहम परदेशी नहीं था और अदृश्य परमेश्वर की आराधना उनके लिए हास्यास्पद था, लेकिन उच्चतर शक्तियों पर उसकी विजय और उसके कैदियों और लूट संबंधित उदार व्यवहार ने लोगों में अचरज और उत्साह उत्पन्न किया। उसके कौशल और साहस को सराहा गया और कोई भी इस बात को नकार नहीं सका कि उसे एक पवित्र सामर्थ्य ने विजेता बनाया था। उसकी भद्र और निस्वार्थी भावना, जो सदोम के स्वार्थी निवासियों के लिए अपरिचित थी, उस धर्म की श्रेष्ठता का एक और प्रमाण थी जिसका उसने साहस और निष्ठा से सम्मान किया था। अब्राहम को आशीष देते समय मलिकिसिदक ने यहोवा को उसकी सामर्थ्य का स्रोत और उसकी विजय का कर्ता माना था। परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में किया। उत्पत्ति 14:19-20। परमेश्वर उन लोगों से अपने ईश्वरीय व्यवधान द्वारा बात कर रहा था, लेकिन पहले की तरह अब भी प्रकाश की अंतिम किरण को बहिष्कृत कर दिया गया। और अब सदोम की अंतिम रात होने को थी। प्रतिशोध के बादलों की परछाई उस शहर पर पड़ चुकी थी। लेकिन मनुष्य ने उसे नहीं देखा। स्वर्गदूत विनाश के अभियान के साथ निकट आ रहे थे। अंतिम दिन भी अन्य दिनों के समान था। सुंदरता और सुरक्षा के दृश्य पर शाम हो चली। अतुल्य सौंदर्य के प्राकृतिक दृश्य डूबते हुए सूरज की किरणों में नहाए हुए थे। संध्याकाल की ठंडक ने नगरवासियों का आह्वान किया और आमोद प्रमोद प्रेमी झुंड समय का आनंद लेने को तत्पर इधर उधर घूम रहे थे। धुंधले प्रकाश में दो अपरिचित नगर के द्वार के निकट आए। वो देखने में यात्री लग रहे थे जो रात को रुकना चाहते थे। कोई भी सोच नहीं सकता था कि ये सीधे साधे यात्री पवित्र दंडाज्ञा के शक्तिशाली अग्रदूत थे, और उस बेपरवाह विलासी भीड़ ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसी रात उन अलौकिक संदेशवाहकों के साथ दुर्व्यवहार करने में वो अपने अपराध बोध की चरमावस्था पर पहुंच जाएंगे, जो उस अभिमानी शहर के विनाश का कारण होगा। लेकिन एक मनुष्य था जिसने इन अनजान मनुष्यों पर ध्यान दिया और उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया। लूत को उनका वास्तविक चरित्र नहीं मालूम था, लेकिन अतिथि सत्कार और शिष्टता उसके स्वभाव में थे। ये उसके धर्म का हिस्सा थे, वो सीख जो उसे अब्राहम के उदाहरण से मिली थी। यदि उसने कृतज्ञता की भावना को विकसित नहीं किया होता तो उसे भी शेष सदोम के साथ नष्ट होने के लिए छोड़ दिया जाता। कई घरानों ने अपरिचितों पर अपने घरों के द्वार बंद करके परमेश्वर के दूतों को अंदर नहीं आने दिया, जो उनके लिए आशीष, शांति और आशा लेकर आते। जीवन का प्रत्येक कर्म, चाहे कितना भी अमहत्वपूर्ण हो, अच्छा या बुरा होता है। सबसे निम्न कर्तव्यों में निष्ठा या उपेक्षा या तो जीवन के लिए सबसे समृद्धिपूर्ण आशीर्वाद या सबसे बड़े संकट के लिए द्वार खोलती है। छोटी छोटी बातों से चरित्र की परख होती है। वे दैनिक आत्मसमर्पण के अकृत्रिम कार्य, जिन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वेच्छा से किया जाता है, परमेश्वर की मुस्कुराहट का कारण है। हमें स्वयं के लिए नहीं वरन दूसरों के लिए जीना चाहिए। स्वयं को भूलने से एक स्नेहमय उपकारी भावना को संजोने में हम अपने जीवन को आशीष बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान, साधारण शिष्टाचार जीवन के सुख का सार बनाने में बहुत दूर तक जाते हैं, और इनकी उपेक्षा मानवीय दुर्दशा को बढ़ाती है। सदोम में उन अपरिचितों का शोषण होने की संभावना को देख लूत ने उनकी सुरक्षा को अपना कर्तव्य समझा और उनके जलपान का प्रबंध अपने घर में किया। यात्रियों के आगमन के समय वो द्वार पर ही बैठा था और उन्हें देखकर उनसे भेंट करने को उठा और शिष्टतापूर्ण अभिवादन करते हुए बोला, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिये और रात भर विश्राम कीजिए। लेकिन उसके अतिथि सत्कार को स्वीकार न करते हुए वे बोले, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। उनके इस उत्तर में दोहरा लक्ष्य था, लूत की नेकनीयति की परख करना और सदोम के पुरुषों के चरित्र के बारे में अनजान प्रतीत होना, जैसे कि उनका मानना था कि चौक में रात बिताना सुरक्षित था। उनके उत्तर ने लूत को उन्हें भीड़ की दया पर न छोड़ने के लिए और दृढ़ संकल्पी बना दिया। वो तब तक आग्रह करता रहा जब तक कि वे मान न गए और उसके साथ उसके घर न चले गए। उन दो अनजान व्यक्तियों को टेढ़े मेढ़े मार्ग से अपने घर लाने में वो अपने आशय को द्वार पर खड़े कामचोरों से छुपाना चाहता था, लेकिन उनकी हिचकिचाहट और विलंब और उसके हठी आग्रह के कारण वे नजर में आ गए, और इससे पहले कि वो रात की नींद ले पाते, लूत के घर के बाहर नौजवान व वृद्ध पुरुषों का बहुत बड़ा झुंड एकत्रित हो गया। अनजान व्यक्ति सदोम की विशेषताओं के बारे में पूछताछ कर रहे थे, और लूत ने उन्हें उस रात बाहर जाने का दुस्साहस न करने की सलाह दी जब उन अनजान व्यक्तियों को उनके हवाले कर दिए जाने के लिए भीड़ का हो हल्ला और हंसी उड़ाने की आवाजें सुनाई दी। यह जानते हुए कि यदि उन्हें हिंसा के लिए उकसाया गया तो वे उसके घर में आसानी से घुस आएंगे, लूत ने बाहर जाकर समझाने बुझाने के प्रभाव को परखना चाहा। उसने कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। भाइयों शब्द के प्रयोग से उसका तात्पर्य पड़ोसियों से था, और वह उनसे समझौता करने की और उनके दुष्टतापूर्ण उद्देश्य के लिए उन्हें लज्जित करने की आशा कर रहा था। लेकिन उसके शब्दों ने आग में घी डालने का काम किया। उनका क्रोध तूफान की गड़गड़ाहट जैसा प्रतीत होने लगा। स्वयं को उनके ऊपर न्यायाधीश जैसे मानने में उन्होंने लूत का तिरस्कार किया और उसे धमकी दी कि वो उसके साथ परदेशियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से भी दुष्टतर व्यवहार उसके साथ करेंगे। वे उस पर कूद पले और यदि परमेश्वर के दूतों ने उसे नहीं बचाया होता तो वे उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर उसे घर के अंदर अपने पास खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। उसके बाद की घटनाओं से उन अतिथियों का, जिनका उसने सत्कार किया था, चरित्र उजागर हो गया। उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। यदि उन पर दोगुना अंधापन न छाया होता तो उनके हृदय की कठोरता के कारणवश परमेश्वर की मार ने उन्हें डरने और बुराई से बचने को बाध्य किया होता। उस रात भी वही सब पाप हुए जो अब तक होते आए थे, लेकिन अनुग्रह, जिसका अभी तक तिरस्कार किया गया था, का आग्रह समाप्त हो गया। सदोम के वासियों ने परमेश्वर की सहिष्णुता की सीमा को लांग लिया था, परमेश्वर के धैर्य और क्रोध के बीच की अदृश्य सीमा। सिद्दीम की घाटी में उसके प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने वाली थी। स्वर्गदूतों ने लूत को अपने अभियान से अवगत कराया, हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सर्वनाश करने के लिए भेजा है। जिन परदेशियों को लूत ने सुरक्षा प्रदान की थी, उन्होंने अब उसे और उसके साथ उस दुष्टतापूर्ण नगर से भाग लेने को तैयार परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का वचन दिया। भीड़ अब थक कर जा चुकी थी और लूत अपने बच्चों को चेतावनी देने गया। उसने स्वर्दूत के शब्द दोहराए, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वो उनकी दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जिसे वो उसका अंधविश्वासी भय समझते थे, उस पर वे हंसने लगे। उसकी पुत्रियां अपने पतियों के प्रभाव में थीं। वे जहां भी थे समृद्ध थे, उन्हें संकट का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। सब कुछ पहले के समान ही था। उनके पास धन संपत्ति थी और सुंदरतापूर्ण सदोम के सर्वनाश की संभावना में वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। दुखी होकर लूत अपने घर लौट आया और अपनी असफलता की कहानी सुनाई। तब स्वर्दूतों ने उसे उठ जाने को और अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों को, जो अभी भी उसके घर में थीं, नगर छोड़ने को कहा, लेकिन लूत विलंब करता रहा। हालांकि वो प्रतिदिन होने वाली हिंसक घटनाओं से दुखित था, लेकिन उस दुष्टतापूर्ण शहर में प्रचलित नीचतापूर्ण और घृणित दुष्टता की उसे वास्तविक समझ नहीं थी। पाप पर रोक लगाने के लिए परमेश्वर की दंडाज्ञा की विवशता को वो समझ नहीं पाया। उसकी सनंतानें सदोम से जुड़ी रहीं और उसकी पत्नी उनके बिना जाने को तैयार न थी। जो धरती पर उसे प्रिय थे, उन्हें छोड़कर जाने का दर्द उसकी सहन शक्ति के बाहर था। संपूर्ण जीवन के परिश्रम से प्राप्त की गई धन संपत्ति और भव्य आरामदेह घर को छोड़कर एक निराश्रित पथिक के रूप में जाना कठिन था। कष्ट से पथराया हुआ, प्रस्थान के लिए अप्रसन्न लूत विलंब करता रहा। परमेश्वर के दूतों की सहायता के बिना वे सदोम के सर्वनाश में नष्ट हो जाते। उन्होंने लूत का और उसकी पत्नी और दोनों पुत्रियों का हाथ पकड़ा और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया।
यहां उन्हें स्वर्गदूतों ने छोड़ा और सर्वनाश के कार्य को संपन्न करने के लिए सदोम की ओर मुड़े। एक और, जिससे अब्राहम ने विनती की थी, लूत के पास आया। तराई के सारे नगरों के लोगों को मिलाकर 10 लोग भी धर्मी नहीं पाए गए, लेकिन कुल पिता की प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति सर्वनाश होने से बचाया गया। आज्ञा आश्चर्यजनक उग्रता से दी गई, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहराना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। हिचकिचाहट या विलंब अब घातक हो सकता था। उस भव्य नगर पर एक टकटकी दृष्टि, सुंदर घर को छोड़ने के दुख में क्षण भर का विलंब उनकी जान ले सकता था। पवित्र दंडाज्ञा का तूफान केवल इसलिए थमा हुआ था कि यह दीन पलायक अपनी निकासी कर सके, लेकिन असमंजस में और भयभीत लूत ने विनती की, वो ऐसा नहीं कर सकता था, इस डर से कि कोई विपत्ति उस पर आ पड़ेगी और वो मर जाएगा। उस दुष्टतापूर्ण नगर में अविश्वास के बीच रहते हुए उसका विश्वास घट गया था। स्वर्ग का राजकुमार उसके साथ था, फिर भी वो अपने प्राणों के लिए इस प्रकार विनती करता रहा मानो जिस परमेश्वर ने उसके प्रति इतना प्रेम और दया दिखाई थी वो उसको नहीं बचाएगा। उसे स्वयं पवित्र संदेशवाहक पर निर्भर करना चाहिए था और बिना प्रश्न किए निसंदेह अपनी इच्छा और अपने प्राणों को परम प्रधान के हाथों में दे देना चाहिए था। देख, वो नगर निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वो छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वो नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा। ये बेला नामक नगर था जिसका बाद में सोअर नाम पड़ा। ये सदोम से कुछ ही दूरी पर था और उसी तरह भ्रष्ट और विनाश का पात्र था, लेकिन लूत ने सोअर को नष्ट न करने की विनती की, ये आग्रह करते हुए कि ये उसका छोटा सा निवेदन था और उसकी इच्छा मान ली गई। परमेश्वर ने उसे आश्वस्त किया, मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूंगा। कितना महान है पापी प्राणियों के प्रति परमेश्वर का अनुग्रह। फिर से लूत को जल्दी करने की आज्ञा दी गई क्योंकि ज्वलंत तूफान को केवल कुछ और समय तक रोका जा सकता था, लेकिन एक निराश्रित ने शापित नगर की ओर दृष्टि फेरकर पीछे की ओर देखा और वो परमेश्वर की दंडाज्ञा का स्मारक बन गई। यदि स्वयं लूत ने स्वर्गदूत की चेतावनी को बिना हिचकिचाए मान लिया होता और निष्ठापूर्वक पहाड़ों की ओर बिना विनती और आपत्ति के भाग गया होता तो उसकी पत्नी भी अपने आप को बचा पाती। उसके उदाहरण के प्रभाव ने उसे बचा लिया होता उस पाप से जिसके कारण उसका विनाश निश्चित हुआ, लेकिन लूत की हिचकिचाहट और विलंब के कारण उसने ईश्वरीय चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। उसका शरीर तो तराई पर था लेकिन उसका हृदय सदोम से जुड़ा था और वो उसी के साथ नष्ट हो गई। उसने परमेश्वर का विरोध किया क्योंकि विनाश के संदर्भ में परमेश्वर की दंडाज्ञा उसकी धन संपत्ति और उसकी संतानों से संबंधित थी। हालांकि दुष्ट नगर से बाहर बुलाए जाने की कृपा की वो पात्र थी, लेकिन उसे लगा कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था क्योंकि जिस धन दौलत को संचय करने में कई वर्ष लग गए थे उसी का छोड़ देना पड़ रहा था। धन्यवाद के साथ मुक्ति को स्वीकार करने के बजाय उसने धृष्टतापूर्वक पवित्र चेतावनी का तिरस्कार करने वालों के जीवन की इच्छा करते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके पाप ने उसे जीवित रहने के अयोग्य ठहराया क्योंकि उस जीवन के संरक्षण के प्रति उसने अकृतज्ञता दिखाई। हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर की अनुग्रहकारी योजनाओं को हल्के में लेने से सावधान रहना चाहिए। कई मसीही कहते हैं, जब तक मेरे बच्चे और मेरे साथ ही बचाए जाते, मुझे स्वयं को बचाए जाने में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें लगता है कि उनकी, जो उन्हें इतने प्रिय है, उपस्थिति के अभाव में स्वर्ग स्वर्ग समान नहीं लगेगा। लेकिन क्या ऐसी भावना रखने वालों को उसकी अच्छाई और अनुग्रह को देखते हुए परमेश्वर के साथ अपने संबंध की सही समझ है? क्या वे भूल गए कि वे अपने सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता की सेवा के प्रति आदर और निष्ठा और प्रेम के पक्के बंधन में बंधे हुए हैं? अनुग्रह का आमंत्रण सबके लिए है, लेकिन क्योंकि हमारे मित्र उद्धारकर्ता के आग्रहपूर्ण प्रेम को स्वीकार नहीं करते, क्या हम भी मुंह फेर लें? आत्माओं का बचाया जाना महत्वपूर्ण है। मसीह ने हमारे उद्धार के लिए भारी रकम चुकाई है, और जो भी इस महान त्याग का और आत्मा के मोल का मान करता है, दूसरों की तरह वो परमेश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार नहीं करेगा। इस सत्य से कि अन्य लोग उसके न्यायपूर्ण दावों को अनदेखा कर रहे हैं, हमारे अंदर यत्न की धुन जागृत होनी चाहिए, जिससे कि उन सभी को जिन्हें हम प्रभावित कर सकते हैं उसके प्रेम का अंगीकार करा सकें। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। प्रातःकाल की स्वर्णिम किरणें तराई के नगरों में केवल शांति और समृद्धि का संकेत दे रही थीं। सड़कों पर सक्रिय जीवन की हलचल शुरू हो गई थी। लोग अपने अपने रास्ते जा रहे थे और दिन के मनोरंजन या व्यापार के लिए प्रयत्नशील थे। लूत के दामाद क्षीण बुद्धि वृद्ध पुरुष की चेतावनी और शंका का ठट्ठा कर रहे थे। बादल रहित आकाश से बिजली की गड़गड़ाहट सा एक अनपेक्षित व अचानक तूफान आ गया। यहोवा ने समृद्ध तराई व नगरों पर आकाश से गंधक और आग बरसाई जिसमें वहां के महल और मंदिर, भव्य भवन, वाटिकाएं और अंगूर के बाग और प्रसन्नचित आमोद प्रमोद प्रेमी, जिन्होंने बीती रात ही स्वर्ग के संदेश वाहकों का अपमान किया था, सब भस्म हो गए। अग्निकांड का धुआं एक विशाल भट्टी के धुएं की तरह उठने लगा। सिद्दिम की घाटी निर्जन हो चली, जिसका पुनः स्थापित होना या जनपूर्ण होना असंभव था। ये आज्ञा उल्लंघन के लिए परमेश्वर की दंडाज्ञा की निश्चितता का सब पीढ़ियों के लिए साक्ष्य था। जिन लपटों ने तराई के नगरों को भस्म किया, उन्होंने अपनी चेतावनी का प्रकाश हमारे समय तक भेजा है। हमें ये भयावह और महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया जाता है कि परमेश्वर की दया पापी को बहुत देर तक सहन करती है, लेकिन पापी के पाप करने की एक सीमा होती है। उस सीमा पर पहुंचने पर कृपा का प्रस्ताव समाप्त कर दिया जाता है और न्याय की परिचर्या का प्रारंभ होता है। जगत का मुक्तिदाता घोषित करता है कि इससे भी बड़े पाप हैं, जिनके लिए सदोम और अमोरा का विनाश किया गया। जो लोग पापियों को पश्चाताप के लिए बुला रहे, सुसमाचार के आमंत्रण को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, वे परमेश्वर के सामने सिद्दिम की तराई के वासियों से भी ज्यादा दोषी है। उससे भी बड़ा पाप उनका है जो परमेश्वर को जानने का और उसकी आज्ञाओं का पालन करने का दावा करते हैं, लेकिन अपने दैनिक जीवन और अपने चाल चलन से परमेश्वर को नकारते हैं। उद्धारकर्ता की चेतावनी के प्रकाश में सदोम की नियति एक औपचारिक प्रबोधन है, केवल उन्हीं के लिए नहीं जो पाप को बढ़ाने के दोषी हैं, वरन उस सब के लिए जो स्वर्ग द्वारा भेजे गए प्रकाश और विशेषाधिकारों के साथ खेल रहे हैं।
प्रकाशित वाक्य 2 आयत 4-5 में लिखा है, जो सच्चे साक्षियों ने इफिसियों की कलीसिया से कहा, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले की तरह काम कर। एक सांसारिक अभिभावक को अपने दुखी हठधर्मी पुत्र को क्षमा करने के लिए हृदय को विवश करने वाली से और अधिक संवेदनशील करुणा के साथ उद्धारकर्ता प्रेम और क्षमा के अपने प्रस्ताव की प्रतिक्रिया की बाट जोता है। वो भटके हुओं से कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। मलाकी 3:7। लेकिन यदि गलती करने वाला करुणामयी मधुर प्रेम से बुलाती हुई आवाज की लगातार अवहेलना करता है, तो वो अंधेरे में छोड़ दिया जाएगा। जो हृदय परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ समझता है, वो पाप के कारण कठोर हो जाता है और परमेश्वर के अनुग्रह के प्रभाव को ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। उनका विनाश बहुत ही भयावह होगा, जिनके लिए प्रार्थना पूर्वक उद्धारकर्ता अंततः घोषणा करेगा, ये मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दो। होशे 4:17। न्याय का दिन तराई के नगरवासियों की तुलना में उनके लिए अधिक असहनीय होगा, जिन्होंने मसीह के प्रेम को जानते हुए भी उसे पीठ दिखाकर पापी संसार के आमोद प्रमोद को चुना। तुम में से जो दया के प्रस्ताव को तुच्छ मान रहे हो, स्वर्ग की पुस्तकों में तुम्हारे विरुद्ध लंबी सूची के बारे में सोचो, क्योंकि व्यक्तियों, परिवारों और राज्यों की अधार्मिकता का लेखा जोखा रखा जाता है। परमेश्वर तब तक सहन करेगा जब तक हिसाब चालू है और पश्चाताप और क्षमा का अवसर प्रदान करता है, लेकिन एक समय आएगा जब हिसाब पूरा हो जाएगा, जब प्राणी का निर्णय हो चुका होगा, जब उसके चयन से उसकी नियति निश्चित हो जाएगी, फिर न्याय के निष्पादन का संकेत दे दिया जाएगा। आज के धार्मिक जगत की स्थिति में खतरे का संकेत है। परमेश्वर की करुणा को हल्के में लिया गया है। जनसाधारण ने मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हुए यहोवा की व्यवस्था को खोखला कर दिया है। मत्ती 15:9। हमारे देश की कई कलीसियों में अधर्म का प्रचलन है। बाइबल को नकारने का अधर्म नहीं, जो कि बहुत साधारण है, वरन मसीहत के वेश में ढका अधर्म, जो बाइबल को परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य होने के विश्वास को खोखला कर देता है। जोश से भरी भक्ति और प्राणाधार धर्मनिष्ठता का स्थान निराधार रीतिवाद ने ले लिया है। इसके परिणाम स्वरूप धर्म त्याग और भोगवाद प्रचलित है। मसीह ने घोषणा की, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। लूका 17:28-30। प्रासंगिक घटनाओं का दैनिक आलेख उसके वचन का पूरे होने की साक्षी देता है। संसार विनाश के लिए तैयार हो रहा है। परमेश्वर की दंडाज्ञा जल्द ही उंडेली जाएगी और पाप और पापी भस्म हो जाएंगे। लूका 21 आयत 34 से 36 में उद्धारकर्ता ने कहा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। सदोम के विनाश से पूर्व परमेश्वर ने लूत को संदेश भेजा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में भी नहीं ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। यरूशलेम के विनाश से पहले यही चेतावनीपूर्ण आवाज मसीह के चेलों द्वारा सुनी गई, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। लूका 21 आयत 20-21। उन्हें अपनी धन संपत्ति में से कुछ बचाकर ले जाने में देर करने के बजाय वहां से भाग जाने के अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। वहां से बाहर निकलना था, दुष्टों से सोचा समझा संधि विच्छेद था, वो जीवन को बचाने का उपाय था। जैसा कि नूह के दिनों में था वैसा ही लूत के साथ हुआ, वैसा ही यरूशलेम के विनाश से पूर्व चेलों के साथ हुआ और अंतिम दिनों में भी ऐसा ही होगा। फिर से परमेश्वर की वाणी सुनाई दी जिसमें चेतावनी का संदेश था और जो लोगों को प्रचलित दुष्टता से अलग होने को कह रही थी।
अंतिम समय में धार्मिक जगत में भ्रष्टाचार और अधर्म की अवस्था के होने का वर्णन भविष्यवक्ता यूहन्ना के बाबुल के स्वप्न दर्शन में प्रस्तुत किया गया है। वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज करता है। प्रकाशित वाक्य 17 आयत 18। विनाश से पूर्व स्वर्ग से आवाज दी जाएगी, हे मेरे लोगो, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों के भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर न आ पड़े। प्रकाशित वाक्य 18 आयत 4। लूत और नूह के दिनों के समान पाप और पापियों का स्पष्ट रूप से अलग होना अनिवार्य है। परमेश्वर और संसार के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता, न ही सांसारिक निधि की प्राप्ति के लिए पीछे मुड़ा जा सकता है। मत्ती 6 आयत 24 में लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। सिद्दिम के तराई वासियों के समान लोग समृद्धि और शांति का स्वप्न देख रहे हैं। परमेश्वर के दूतों द्वारा चेतावनी दी जाती है, अपना प्राण लेकर भाग जा, लेकिन अन्य आवाजें ये कहते सुनाई देती हैं, उत्तेजित न हो, चौंकने का कोई कारण नहीं। जनसाधारण चिल्लाते हैं, शांति और सुरक्षा, जबकि स्वर्ग ये घोषणा करता है कि पापी का जल्द ही विनाश होने को है। विनाश के पूर्व की रात तराई के नगर खा पी रहे थे और परमेश्वर के संदेशवाहकों की चेतावनी को उपहास में उड़ा रहे थे, लेकिन वो ठट्ठेबाज लपटों में भस्म हो गए। उसी रात सदोम के बेपरवाह व दुष्ट निवासियों के लिए दया का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। परमेश्वर हमेशा तिरस्कार नहीं होने देगा और ना ही स्वयं को हल्के में लेने देगा। यशाया 13 आयत 9 में लिखा है, देखो यहोवा का वो दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वो पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। जगत के अधिकांश लोग परमेश्वर के अनुग्रह को अस्वीकार करते हैं और शीघ्रगामी असाध्य विनाश से पराजित होंगे। जो चेतावनी को गंभीरता से लेते हैं वे परमप्रधान के गुप्त स्थान में वास करेंगे और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। उसकी सच्चाई उनके लिए ढाल और कवच होगा। उनके लिए प्रतिज्ञा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। भजन संहिता 91 आयत 1-4-16। लूत सोअर में कुछ ही समय के लिए रहा। सदोम की तरह यहां दुष्टता प्रचलित थी, क्योंकि नगर के विनाश होने की संभावना के कारण वहां बसने से डरा हुआ था। कुछ ही समय पश्चात सोअर भस्म हो गया, जैसा कि परमेश्वर ने सोचा था। लूत पहाड़ों की ओर जाकर उस सब से वंचित,
जिसके लिए उसने अपने परिवार को उस दुष्ट नगर से प्रभावित होने देने का दुस्साहस किया था, एक गुफा में जाकर रहने लगा। लेकिन सदोम के श्राप ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी पुत्रियों का पापमय आचरण उस घृणित स्थान की बुरी संगति का परिणाम था। उसका नैतिक भ्रष्टाचार उनके चरित्र के साथ इस तरह घुल मिल गया था कि वो अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर नहीं समझ पाई। मोआबी और अम्मोनी, जो लूत के वंशज थे, वे पापी और मूर्ति पूजक, परमेश्वर के विद्रोही और उसके लोगों के शत्रु थे। लूत का जीवन अब्राहम के जीवन से कितना अलग था। एक बार वो साथी थे, अपने तीर्थयात्री तंबुओं में पास पास रहते हुए एक ही वेदी पर आराधना करते थे, लेकिन अब एक दूसरे से कितने दूर हो गए थे। लूत ने आमोद प्रमोद और लाभ के लिए सदोम को चुना था। अब्राहम की वेदी और जीवित परमेश्वर को चढ़ाए जाने वाली बलि की भेंटों को छोड़कर उसने अपनी संतानों को भ्रष्ट और मूर्ति पूजा करने वालों के साथ मेलजोल बढ़ाने की अनुमति दी, लेकिन अपने हृदय में उसने परमेश्वर के भय को बनाए रखा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में उसे भला व्यक्ति कहा गया है। प्रतिदिन कानों में पड़ने वाला अधर्मी वार्तालाप और जिस हिंसा और अपराध को रोकने में वो असमर्थ था, उसकी धर्मी आत्मा को दुखी कर देता था। आखिर में आग से निकाली हुई लकड़ी के समान उसे बचा लिया गया, ज़करिया 3:2। लेकिन अपनी धन संपत्ति से वंचित, पत्नी और संतानों के वियोग में, गुफाओं में जंगली जंतुओं समान रहते हुए वो वृद्धावस्था में अप्रसिद्ध था। उसने जगत को धर्मी पुरुषों का वंश नहीं, वरन दो मूर्ति पूजक राज्य दिए, जो परमेश्वर के साथ शत्रुता करते थे और उसके लोगों के साथ युद्धरत थे। उनकी दुष्टता का कटोरा भरने पर उनका विनाश निश्चित था। एक गलत कदम का परिणाम कितना भयानक था।
बुद्धिमान पुरुष कहता है, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। नीतिवचन 23:4-15:27। प्रेरित पौलुस कहता है, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। 1 तिमुथियुस 6:9। जब लूत ने सदोम में प्रवेश किया, वो अपने आप को पाप से मुक्त रखना चाहता था और अपने घराने का संचालन स्वयं करना चाहता था, लेकिन वो असफल रहा। उसके आसपास भ्रष्टाचारी प्रभावों ने उसके विश्वास को प्रभावित किया और उसकी संतानों का सदोम वासियों के साथ संबंध के कारण उसकी भी रुचि उनके साथ जुड़ गई। परिणाम हमारे सामने है, कई अभी भी यही गलती कर रहे हैं। घर के चयन में वे अपने परिवारों के आसपास के नैतिक व सामाजिक वातावरण को देखने के बजाय प्राप्त होने वाले सांसारिक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हैं। वे अधिक समृद्धि की प्राप्ति की आशा में किसी समृद्ध नगर में स्थानांतरित हो जाते हैं या किसी उपजाऊ और सुंदर नगर को चुनते हैं, लेकिन उनके बच्चे प्रलोभनों से घिर जाते हैं और वे प्रायः ऐसी मंडलियां बना लेते हैं जो अच्छे चरित्र के निर्माण और धार्मिकता के विकास के प्रतिकूल होती है। धर्म भ्रष्टता, अविश्वास और धार्मिक विषयों के प्रति उदासीनता के वातावरण में अभिभावकों के प्रभाव का प्रतिकार करने की प्रवृत्ति होती है। नौजवानों के सम्मुख ईश्वरीय व पैतृक प्रभुत्व के प्रति अतिक्रमण के कई उदाहरण हैं। कई नास्तिकों और अविश्वासियों के मोह में पड़ जाते हैं और परमेश्वर के शत्रुओं के सांचे में ढल जाते हैं। घर के चयन में परमेश्वर चाहता है कि हम सर्वप्रथम अपने और अपने परिवारों के चारों तरफ के नैतिक व धार्मिक वातावरण पर ध्यान दें। हम कई बार तनावपूर्ण स्थितियों में पड़ सकते हैं क्योंकि हमें मनचाहा वातावरण नहीं मिलता, और जब भी हमारा कर्तव्य हमें बुलाता है, यदि हम मसीह के अनुग्रह में विश्वास रखकर सतर्क रहें और प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर हमें शुद्ध रहने में सुयोग्य बनाएगा। लेकिन हमें अनावश्यक स्वयं को मसीही चरित्र निर्माण के लिए हानिकारक तत्वों के सामने नहीं लाना चाहिए। जब हम स्वेच्छा से स्वयं को अविश्वास और सांसारिकता के वातावरण में रख देते हैं, हम परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं और पवित्र दूतों को अपने घरों से बाहर कर देते हैं।
जो लोग सनातन लाभ के बदले अपनी संतान के लिए सांसारिक धन संपत्ति और यश प्राप्त करते हैं, अंत में इस लाभ से हानि उठाते हैं। लूत की तरह कई अपने बच्चों को बर्बाद हुआ पाते हैं और अपनी आत्मा को भी मुश्किल से बचा पाते हैं। उनके जीवन भर का श्रम व्यर्थ हो जाता है और उनका जीवन एक दुखद असफलता। यदि उन्होंने वास्तविक बुद्धिमता से काम लिया होता तो उनकी संतान के पास सांसारिक समृद्धि तो कम होती, पर अनश्वर विरासत का अधिकार को सुरक्षित कर लिया होता, जो विरासत परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रतिज्ञाबद्ध की है, वो इस संसार में नहीं है। अब्राहम के पास इस धरती पर कोई अधिकृत क्षेत्र नहीं था, उसको कुछ मीरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन उसका प्रयोग उसने परमेश्वर की महिमा और अपने परिजनों के भले के लिए किया, लेकिन वो इस संसार को अपना घर नहीं मानता था। परमेश्वर ने उसे मूर्ति पूजक देशवासियों को छोड़ने के लिए बुलाया था और चिरस्थायी संपत्ति के रूप में कनान का प्रदेश प्रतिज्ञाबद्ध किया था। जब अब्राहम ने अपने मृतकों को गाड़ने के लिए स्थान चाहा तो उसे कनानियों से खरीदनी पड़ी। प्रतिश्रुत देश में मकपेला की गुफा में पत्थर काटकर बनाई गई गुंबद उसकी एकमात्र संपत्ति थी।
लेकिन परमेश्वर का वचन ना ही असफल हुआ था और ना ही यहूदियों के द्वारा कनान के कब्जा करने पर परिपूर्णता पर पहुंचा था। गलातियों 3:16 में लिखा है, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गईं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के परिपूर्ण होने में बहुत विलंब हो सकता है, क्योंकि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। दूसरा पत्रस 3:8। देर होती प्रतीत हो सकती है, लेकिन निर्धारित समय पर इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इनमें धोखा ना होगा। हबक्कूक 2:3। केवल कनान का प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी अब्राहम और उसके वंश के उपहार में सम्मिलित थी। रोमियो 4:13 में प्रेरित कहता है, ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। और बाइबल की शिक्षा यही है कि अब्राहम को दिए हुए वचन मसीह के द्वारा परिपूर्ण होंगे। जो भी मसीह के है वे अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस है। एक अविनाशी, निर्मल और अजर मीरास के लिए पाप के श्राप से मुक्त धरती। गलातियों 3:29, 1 पत्रस 1:4। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी, और नग्न लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दानियल 7:27, 37:11। परमेश्वर ने अब्राहम को अनश्वर विरासत की झलक दिखलाई और वह इसी आशा से संतुष्ट था। इब्रानियों 11:9-10 में लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसको रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 11:9-10। अब्राहम के वंश के बारे में लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। इब्रानियों 11:13। हमें यहां एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश, इब्रानियों 11:46 की प्राप्ति के लिए तीर्थयात्री और परदेशी के समान रहना होगा। अब्राहम की संतान उस शहर की अपेक्षा कर रहे होंगे जिसका वह अभिलाषी था, जिसका निर्माण करने वाला परमेश्वर है।